ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम से पाठ प्रथम सप्तम स्कंध अध्याय एक समदर्शी भगवान। आज इस अध्याय के 10 नंबर श्लोक। यदा शिशिक्षुः पुरोआत्मनः परो रजसुजत्येष पृथक् सुमायया सत्त्वं विचिन्नासु इदं सुईश्वरः सयिष्यमानः तमयिष्यति असौ। यदा शिशिक्षुः पुरोआत्मनः परो रजः सुजत्येष पृथक् सुमायया सत्त्वं विचिन्नासु इदं सुईश्वरः सयिष्यमानः तमयिष्यति असौ। यदा शिशिक्षुः पुरोआत्मनः परो रजः सुजत्येष पृथक् सुमायया सत्त्वं विचिन्नासु शिरं सुईश्वरः सयिष्यमानः तमयिष्यति असौ। यदा जब शिशिक्षुः सृष्टि करने की इच्छुक पुरः भौतिक शरीर आत्मनः जीवों के लिए परः भगवान रजः रजगुण सृजति प्रकट होता है ईशः वह पृथक अलग मुख्यतया सॉरी पृथक अलग या मुख्यतया सोमायया अपनी सृजन शक्ति के द्वारा सत्वम सतगुण विचिन्नासु विभिन्न प्रकार के शरीरों में रिरंसु कर्म करने का इच्छुक ईश्वर भगवान सहिष्यमाण समाप्त करने के निकट तमः तमोगुण इरयति प्रकट करता है असौ वह परमेश्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्म के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्वगुण रजगुण तथा तमगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब तो परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सुजन पालन तथा संहार के गुणों का प्रभावित करते हैं, जिनमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजगुण का उपयोग सुजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। कृपया दोहराइए, जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्म के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्वगुण रजगुण तथा तमगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिनमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। तात्पर्य, यद्यपि भौतिक प्रकृति का संचालन सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण के द्वारा होता है, लेकिन प्रकृति स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि भगवान भगवद्गीता के नवम अध्याय के 10 नंबर श्लोक में कहते हैं, मया धक्षेण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानी न कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अंतर्गत कार्य कर रही है और यह समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न कर रही है। इसी के नियमानुसार इस जगत का बारंबार सृजन तथा विनाश होता रहता है। भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन तीनों गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का फल स्वरूप होते हैं, किंतु इन तीनों गुण से भी ऊपर उनका अध्यक्ष परमेश्वर होता है। प्रकृति जंत्रारूढ़ानी माया द्वारा जीवों को प्रदत्त विभिन्न प्रकार के शरीरों में या तो सत्वगुण प्रधान होता है अथवा रजगुण या तमोगुण। शरीर की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा भगवान के निर्देशानुसार होती है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि यदा शिशिक्षु पूर्वात्मना परः, सूचित करता है कि यह शरीर निश्चित रूप से भगवान द्वारा सृजित है। कर्मणा दैव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सत्वगुणी है, यह रजगुणी तथा तमोगुणी। यह सब बहिरंगा शक्ति के द्वारा पृथक सोमाया भगवान के निर्देशन में संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार भगवान ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए ऐसा ही करते हैं। इसके लिए तमोगुण के उपयोग करते हैं। इस तरह से जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं। यदा शिशिक्षु पूर्वात्मनः परो रज सुज तेष पृथक् स्वमायया सत्वं विचिन्नासु इरंसु ईश्वर सहिष्यमाण स्तमः इरयति असौ। जब भगवान विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न करते हैं और प्रत्येक जीव को उसके चरित्र तथा सकाम कर्म के अनुसार विशिष्ट प्रकार का शरीर प्रदान करते हैं, तो वे प्रकृति के सारे गुणों सत्वगुण रजगुण तथा तमोगुण को पुनर्जीवित करते हैं। तब परमात्मा के रूप में वे प्रत्येक शरीर में प्रविष्ट होकर सृजन पालन तथा संहार के गुणों को प्रभावित करते हैं, जिसमें से सत्वगुण का उपयोग पालन के लिए, रजोगुण का उपयोग सृजन के लिए तथा तमोगुण का उपयोग संहार के लिए किया जाता है। पिछले श्लोकों में अंतिम में तात्पर्य में प्रभुपाद ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए ये वर्णन किए थे कि प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवात्मा उनको दर्शन करने में सक्षम नहीं होता। किस लिए, क्या उदाहरण दिया गया था, किस लिए भगवान हृदय में होते हुए भी हम इनको देख नहीं पाते, कारण क्या? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाए थे कि जैसे आकाश में सूर्य है, चंद्रमा भी है, और चंद्रमा जुस्ना राति में पूर्णिमा चंद्रमा रहते हैं, सारे तारा भी रहते हैं, लेकिन जब बादल छाया रहता है आकाश में, फिर हम चंद्रमा को तारा या सूर्य को दर्शन नहीं कर पाते हैं बादल। इसी प्रकार ये तीनों गुण जो ये बादल के समान कार्य करते हैं, कौन सा? सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये हमारे जो गुणातीत जो हमारा नेचर है, हमारा जो स्वभाव है, तो उसको ये ढक कर रखते हैं। कौन? ये गुणों के द्वारा प्रभावित होने के कारण त्रिगुणमयी माया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। भगवान कहे कि गुण मेरे जो माया है, बहिरंग शक्ति जो भगवान है, भगवान का तीनों गुण के द्वारा कार्य करती हैं, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। इनके द्वारा प्रभावित रहने कारण, इनके द्वारा हम प्रभावित होने के कारण हमारा शुद्ध जो आध्यात्मिक चेतना को हम खो देते हैं, भगवान को दर्शन करना संभव नहीं होता है। इसलिए ये श्लोक में बताया जाता है कि यदा शिशुख्य पुर आत्मन पर भगवान जब भगवान को जब सृष्टि करने की इच्छा होती है, वा जब सृष्टि करने की जो इच्छा, ये किस गुण से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। पालन करने की इच्छा सत्वगुण से, और इसको सारा संहार करने की सृष्टि की इच्छा किससे उत्पन्न होता है? तमगुण से। इसलिए तीनों गुणावतार भगवान भी है, भगवान स्वयं को तीनों गुणावतार के रूप में विस्तार किए हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर जी के रूप में। तो इसी प्रकार जैसे संपूर्ण सृष्टि भगवान करते हैं क्षेत्रज्ञ के रूप में, इसी प्रकार ये शरीर में भी भगवान क्षेत्रज्ञ के रूप में परमात्मा रूप में बैठे हैं। भगवान ने कहा कि क्षेत्र इदं शरीर कुंते क्षेत्रमिति विधीयते, ये शरीर ही भी क्षेत्र है, और इसमें क्षेत्रज्ञ के रूप में कौन बैठा है? परमात्मा बैठे स्वयं हैं, आत्मा। तो लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी जीवात्मा जब रजगुण के द्वारा प्रभावित तो होता है, उसके मन में ये उत्पन्न होता है इच्छा, क्या इच्छा? सृष्टि करने का। इसलिए भगवान कहते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजगुण समद्भव। काम और क्रोध ये रजगुण से ही उत्पन्न होते हैं, हैं? संभोग की इच्छा ये किसी गुण से आता है? रजगुण से। रजगुण नहीं होने से आपको संभोग की इच्छा प्रकट नहीं होगी। सृष्टि करने के सृजन करने की इच्छा रजगुण से उत्पन्न होता है, हैं? जिसके पास में रजगुण प्राधान्य है, तो फिर वो फिजिकल रजगुण व्यक्ति क्या करता है? कुछ फिजिकल काम करना चाहता है, वो शांत में बैठ नहीं सकता। कोई कार्य ऐसे शांत में बैठे, उसको बोले कि शास्त्र अध्ययन करो, थोड़ा पढ़ाई करो, कि बैठ के क्या भगवान के विग्रहों को अर्चना करो, वो सब ऐसे ही ध्यान करो, जप करो, ये नहीं कर सकता। ऐसे कुछ फिजिकल काम चाहिए, हैं? कीर्तन में नाच सकता है, मचाना से इसको प्रसाद लोग नाच, वो डांसिंग कर सकता है। इसीलिए इस कलयुग में सारे ये रजोगुण, बात विशेष रूप में मनुष्य जो नहीं रजोगुणी है, इसीलिए कहा जाता है कि ये नाचो, हैं? कीर्तन में डांसिंग करते हो, डांसिंग कर सकते हैं, लेकिन बैठ के सुबह किताब पढ़ो नहीं पढ़ सकता मैं। तो इसलिए कोई भी गुण है, लेकिन गुणों को यदि भगवान की सेवा में लगाएगा, वो त्रिगुणातीत हो जाता है वही रजोगुण में। और जो व्यक्ति जो जाएगा और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ कार्य करते रहेगा, तो फिर वो बंधन में बांध जाता है, लेकिन वही रजोगुण यदि भगवान की सेवा में लगाएगा, नाचेगा, गाएगा जोर से, भगवान के लिए कुछ कार्य करेगा, घर में रहेगा तो बिजनेस करेगा, वही कहीं इधर उधर भाग दौड़ करके धन कैसे कमाएगा, इसके पीछे लगा रहेगा। लेकिन वही व्यक्ति रजोगुणी यदि भक्त बन जाएगा और मंदिर में टेम्पल कमांडर बन के मंदिर के लिए कुछ काम करेगा, हैं, मंदिर के लिए इधर उधर भागेगा, उसको चाहिए, वो ऐसा ही शांत में नहीं बैठ सकता है। उसको बोले कमरे में बैठ के किताब पढ़ो, ये करो, शास्त्र अध्ययन करो, वो बोलेगा नहीं, मुझे एकड़ चाहिए, क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, और इसमें चढ़ के मैं जाऊंगा, मुझे चाहिए थोड़ा घूमेगा इधर उधर घूमना है, से लीडरशिप करेगा, उसका स्वभाव है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ करना देखा मैंने कार्य करना चाहता है। और रजोगुण के प्रभाव से, यहाँ कहते हैं कि रजोगुण के प्रभाव से ही व्यक्ति सृष्टि कार्य होता है, जो रजोगुण में नहीं है वो फिर संभोग की इच्छा बा ये सब उसके पास प्रकट नहीं होगा। वो सत्वगुणी व्यक्ति ही वो शांत रहता है। रामानुज आचार्य के शिष्य थे, उनके नाम था गोविंद, उनके माने भाई भी थे, मासी का लड़का थे, गोविंद था उनके नाम। तो उन्होंने उनकी घर में तो उनकी जो एक ही लड़का था, तो उनकी मासी जो थी किनकी, रामानुज आचार्य, वो बार बार कहते थे कि मेरे लड़का को घर भेजो, क्योंकि एक ही लड़का है, उसको शादी कराना है, शादी करके घर में रहना चाहिए। तो शादी भी कर दिया गया, फिर भाग्य, लेकिन फिर कहने पर रामानुज आचार्य कहे कि जाओ तुम्हारा माँ कुछ दिन रहो घर में, फिर आओ। तो बोला ऐसे कैसे, नहीं बोले मैं तो मैं मेरे पास में रजोगुण, पहले तो आपकी यदि रजोगुण के प्रभाव नहीं है आपके पास में, तो आप मन में कभी भी क्या काम वासनाएं संभोग की इच्छा प्रकट नहीं हो, तो फिर आप जाओगे, और जाने से अपने आप वो आप घर में जाकर उसको भागवत पढ़ाओ। किसको भागवत पढ़ाओ, शादी जिसको करते हो पत्नी को पढ़ाओ भागवत, इसको भक्त बनाओ, उसको भक्त बनाओ, फिर दोनों भक्त बन के आओ। तो बार बार कहने पर तो गए घर में, लेकिन जब घर गए तो रात में आगे बस कम बेडरूम गए, बेडरूम में, लेकिन क्या लेकर हाथ में, क्या भागवत है, बोले बैठो मैं भागवत पढ़ता हूँ सुनो, हैं भागवत चर्चा करते हैं बस। तो भागवत चर्चा रात भर ये तो बैठे भागवत पढ़ के, भागवत पढ़ते थे, भागवत की व्याख्या बड़े प्रेम से एकदम विवल होकर भागवत व्याख्या करते थे, और बैठ के सुनते रहे। पहले को भागवत व्याख्या सुनने तो नहीं आए थे, सात दिन चला गए तो रोते हुए अपने पिताजी घर में चले गए। तो इस प्रकार यदि किसको सत्वगुण की प्राधान्यता होगा है, तो उसकी मन में सृष्टि की इच्छा, संभोग की इच्छा नहीं होता है, तो उसकी स्वभाव कुछ अलग बन जाता है, उसको पढ़ाई करने में, भगवान की अर्चना करने में, कीर्तन करने में ऐसे मन लग जाएगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है तो फिर उसको काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भव, रजोगुण से प्रभाव ये प्रभावित होकर ये इच्छा प्रकट होती है, कामनाएं भिन्न भिन्न कामनाएं, और क्रोध भी आता है, जो कामना की पूर्ति नहीं होता है, क्रोध आना, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए रजोगुण के अवतार जो ब्रह्मा जी, इनका ही डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट, सृष्टि का डिपार्टमेंट, सृष्टि करते हैं, सृष्टि कार्य इसलिए इनको दिया गया। और जैसे भगवान विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देवता व गुणावतार है, इसलिए इनको पालन की कार्य दिया गया। इसी प्रकार हम भी जो जीवात्मा शरीर में रहकर जो सत्वगुण की द्वारा प्रभावित होता है, विशेष रूप में रजोगुण की द्वारा प्रभावित होने से उसके मन में सृष्टि की इच्छा होती है, संतान उत्पन्न करना, फैमिली बढ़ाना, परिवार को फिर चलाने के लिए धन कमाना, दौड़ यहाँ धान दौड़ करना, ये सब काम उसके पास उग्र मूर्ति है, कार्य करने की इच्छा होती है डायरेक्ट कुछ फिजिकल लेबर। और सत्वगुण हो जाएगा तो फिर वो शांत रहेगा, गीता पढ़ेगा, भागवत पढ़ेगा, भगवान के ऊपर निर्भर रहेगा, जो मिला इसमें इसमें संतोष होगा। रजोगुणी व्यक्ति को भी संतोष नहीं होगा, जितने मिलेगा और चाहिए और चाहिए, इतने मिला फिर और चाहिए और चाहिए और चको, उसकी शांत कामना की पूर्ण नहीं होता है, पूर्ति नहीं होता है। रजोगुण सत्वगुण व्यक्ति में जो मिला उसमें शांत रहता है, ठीक है जो भगवान की इच्छा से मिला बस, इसका फैमिली चलने के लिए। इसीलिए सत्वगुणी व्यक्ति को क्या कहते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति कौन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सत्वगुणी कौन, ब्राह्मण, ब्राह्मण इसमें सत्वगुणी माना जाता है, वो संचय नहीं करता। ब्राह्मण अपना जितना मिलता है संतोष रहता है, और उसके भगवान की भक्ति में लगा रहता, जजन जाजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह इसमें लगा रहता, छह प्रकार सत्कर्म निपुण विप्र, ब्राह्मण को छह प्रकार की क्रिया से लगा रहता, और उसकी जो मुख्य गुण ब्राह्मण के पास में सम दम तप शौच क्षंति आर्जमय वच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, इंद्रिय को संयम करके संयम करना, मन को संयम करना, ये संयमित सो रहता है सत्वगुणी व्यक्ति के पास, ब्राह्मण के पास है। सम दम तप तपस्या करना, शौच पवित्र रहना, सम दम तप शौच ख्यांति सहनशील सहनशील रहता है, जो कुछ उसको प्रणादपि सुनिचे ना तरह रूपी सही सुनाए गुण उसके पास होता है, ख्यांति समाधम तपसौच ख्यांति आर्जव है। आर्जव का अर्थ है धार्मिकता, धर्म के मार्ग पर वा चलना। आर्जव एवच ज्ञान विज्ञान, शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र के जो विज्ञान अर्थात उसको अपने जीवन में उतारता है, जो इसके जो जीवन जो धारा है वो शास्त्र के आधार पर ही होता है। इस प्रकार ब्राह्मण की ये सब गुण दिखाई पड़ता है, सत्वगुण में ये सब गुण दिखाई पड़ेगा, जो सत्वगुणी ब्राह्मण। और जो रजोगुण के प्रभाव से जो व्यक्ति वो उसके पास में शौर्य तेज धृति साहस ये सब धृति दक्षता ये सब गुण शौर्य तेज धृति दाक्ष्य युद्धि चाप्य पलायनम लड़ाई करना तो फिर वो छोड़ने वाला नहीं। झगड़ा हो गया तो कुछ भी हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ भी वो छोड़ने वाला है नहीं रजोगुण के प्रभाव से। युद्ध चाप्य पलायनम दान ईश्वर भाव, इसका ईश्वर भाव रहता है, बहुत परिश्रम करके धन कमाएगा। और कभी कभी वो भी यज्ञ आदि करता है लेकिन उसका इच्छा क्या होता है, लोगों को दिखाना, देखो मैं कितनी महान इतना यज्ञ करता है विश्व को। तो इसलिए रजोगुण के प्रभाव से आने से ही हमारे पास में ये सब इच्छा प्रकट होती है। तो इसलिए मुख्यतः संसार में सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कौन से गुण में होते हैं, और तमोगुण में जो होता है उसके पास में क्या लक्षण होता है, निद्रा आलस्य, वो कुछ करना नहीं चाहता, बस चुपचाप से अरे सो गया तो बस सोने में उसको आनंद आता, बहुत बहुत आनंद सोने में आता है। खाना ठीक है, मेरे प्रसाद का टाइम गया, देखो ताज वो भी गरम गरम प्रसाद खाओ, बोले नहीं सो रहा हूँ, तो उठो उठेगा फिर वो तो कोई प्रसाद सूखा हो जाने पर कोई सड़ा होने से भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो खाएगा वो उसको सोने में कुंभकर्ण के चलाव होता है, किसका कुंभकर्ण था, क्या करता था वो खाना और सोना, छः घंटा छः महीना खा सो जाता, एक साथ सोता छः महीना सो गया, उसको कुछ लेना देना क्या चलता संसार में, चलने तो हमको क्या लेना देना है। सब समय ऐसे ही उसकी स्वभाव होता है, इसलिए तमोगुण से ही विशेष रूप में प्रभावित होने से व्यक्ति कुछ करना नहीं चाहता, कुछ नहीं करेगा। सत्वगुणी व्यक्ति तो कुछ करना चाहता लेकिन वो ऐसे ही मैंने कुछ ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु के इंद्रिय को भोगने के लिए ऐसे काम को नहीं करना चाहता, लेकिन वो चुपचाप बैठ के अपने कुछ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आत्मा माने आत्मशुद्धि के लिए कुछ कार्य करता है, जैसे शास्त्र आदि पर अध्ययन करना आदि ये सब कार्य में लगा रहता है। लेकिन रजोगुण के प्रभाव से ये सब नहीं करेगा, रजोगुण के प्रभाव से फिर दूसरे प्रकार के। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य प्रारंभ करते कि इसलिए रजोगुण के प्रभाव से तो सृष्टि होता है, लेकिन सृष्टि जो करने वाली जो प्रकृति मेरी माया अध्यक्षण है, वो मेरा अध्यक्षता से ही कार्य करती है। कौन त्रिगुण वही माया जो बहिरंग शक्ति है, वो भगवान की अध्यक्षता से कार्य करती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। माया अध्यक्षण प्रकृति सुयत स चराचरम, सारा सृष्टि को मेरे अध्यक्षता से प्रकृति सृष्टि की है। हेतु नान कौनते जगत भी पर, लेकिन जैसे ब्रह्म संहिता भी कहा गया कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। भगवान ने सृष्टि स्थिति प्रलय की अधिकारिणी देवी तो दुर्गा को बनाए, लेकिन भगवान कहते कि फिर भी वो स्वतंत्र नहीं है। यहाँ जैसे कहते कि माया अध्यक्षण मेरे अध्यक्षता से कार्य करती है, वहां पर भी कहते कि वहां भी भगवान कहते कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय के अधिकारिणी होते हुए भी मेरे जो बहिरंग प्रकृति है दुर्गा, वो मेरी निर्देशन ही कार्य करती, किसके निर्देशन में, भगवान के निर्देशन में। लेकिन ये होते हुए भी भगवान यदि वो उनकी अल्टीमेटली उन्हीं की अध्यक्षता से सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भगवान इसमें लिप्त तो नहीं रहते हैं। नमे कर्माणी लिप्यंती नमे कर्म फले स्पृहा, भगवान कर्मबंध में नहीं फंसते हैं। बा हमें जो शरीर प्राप्त हुआ, भगवान ने अपने इच्छा से इसे इंडिपेंडेंट नहीं दिया हमको, हमारा कर्म के आधार पर हमें शरीर मिला है। इसलिए प्रभुपाद उसको भी कोट करते कि ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव कहते कि दैवेन ने कर्मेण दैवनेत्राण जंतु देह उपद्यते, एक जंतु बा एक जीवात्मा को शरीर कैसे किस लिए प्राप्त होता, कैसे शरीर प्राप्त होता, अलग अलग शरीर क्यों प्राप्त होता, उसकी कर्म उसके कर्म के आधार पर दैव अर्थात भगवान ने निर्णय लेते हैं कैसा शरीर उसको मिलना चाहिए। कर्मेण दैव नेत्रणा, जैसे कर्म किया कि कर्म के आधार पर इसको दूसरा शरीर, ऐसे शरीर इसको प्राप्त होता है। कर्मेण दैव नेत्रणा जंतु देह पपद, जंतु को शरीर प्राप्त होता है। इसलिए जब ये विशेष रूप में सतगुण के द्वारा प्रभावित होता है तो जीवात्मा को फिर उसी आधार पर इस मनुष्य जोनि में, विशेष रूप में हम मनुष्य की जोनि का चर्चा करते हैं, जो सतगुण के प्रभाव के द्वारा जिस जीवात्मा पूर्व जन्म के कर्म किया है ऐसे सतगुणी कर्म, तो फिर वो कहाँ जन्म लेगा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा। जो रजगुण के द्वारा प्रभावित हुआ है, जिस जीवात्मा से कर्म उग्र कर्म किया तो प्रभावित होकर यदि कर्म के आधार पर मनुष्य जोनि उसको मिलता तो कौन से घर में जन्म होता है, क्षत्रिय की जोनि में जाता है। और जब भी रजतम मिश्रित होता है तो वैश्य, और तमोगुण में कौन सा, शूद्र, शूद्र परिवार में जन्म लेता। तो इसलिए कहते हैं कर्मेणा दैव नेत्रेण, जीव के कर्मानुसार भगवान के निर्देशन में शरीर निर्मित किया जाता है। यह शरीर सत्वगुणी है, यह रजगुणी अथवा तमोगुणी, यह सब बहिरंग शक्ति के द्वारा पृथक स्वमाया भगवान के निर्देशन से संपन्न किया जाता है। इस प्रकार भगवान ईश्वर विभिन्न प्रकार के शरीरों में परमात्मा रूप में निर्देश देते हैं और पुनः शरीर को विनष्ट करने के लिए भी ऐसा ही करते हैं। इसके लिए वे तमोगुण का उपयोग करते हैं और इस तरह वे जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर, इसी प्रकार जीवों को विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते रहते हैं। भगवान परमात्मा रूप में साक्षी रूप में बैठे हैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में, और साथ में कौन बैठा है, जीवात्मा भी बैठा है, दोनों हैं, जीवात्मा और परमात्मा। उपनिषद में कहा कि दो पक्षी बैठे हैं, एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हैं। जीवात्मा कर्म करता है, कर्मफल को भोगता है, लेकिन परमात्मा साक्षी रूप में बैठे हैं, वो कर्म नहीं करते हैं लेकिन सेंक्शन करता है। उनके सेंक्शन के बिना कुछ भी होता ही नहीं, किनके, परमात्मा के सेंक्शन के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन वो सेंक्शन कर जो देखते हैं कि जीवात्मा की ऐसा इच्छा है, तो फिर उसकी इच्छा उनकी सेंक्शन से, अधिकता से, उनके सेंक्शन से वो मैंने कार्यकारी होता है। लेकिन फिर भी भगवान उसे उसके लिए दायी नहीं रहते। आप चाहा, आप जैसे कहा ऐसे मुझे चाहिए तो ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा कर्म को फल तुमको ही भोगना पड़ेगा, जीवात्मा को ही भोगना पड़ता है। इसलिए भगवान कहते कि न मैं कर्माणि लिप्यति न मैं कर्म फले सुहा, मुझे कर्म फल में आशा है ना, कर्म मैं करता हूँ, कर्म तो जीवात्मा खुद ही करता है और कर्म का फल उसी को भोगना पड़ता है। प्रत्येक जीवात्मा को अपने कर्मफल को ही भोगना पड़ता है। लेकिन इसी कलयुग में प्रत्येक जीव कौन सा गुण के द्वारा प्रभावित है, तमगुण के द्वारा। कलौ शूद्र संभव, कलयुग में सारे शूद्र है, कलयुग में सारे शूद्र है कहा गया, पद्म पुराण में कहते कलयुग कलौ शूद्र, कलयुग में प्राय सब शूद्र है, सभी शूद्र। जो कहीं ये नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया, क्षत्रिय के कुल में, कोई इंडिया में जन्म लिया, कोई अमेरिका में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जन्म ले, जीवात्मा का जो स्वरूप, जो स्वभाव बना हुआ बचपन से जन्म से, वो है शूद्र स्वभाव, तमगुण प्राधान्य है। तो इसलिए कलौ शूद्र संभव, लेकिन ऐसे जीवात्मा को भी ट्रेंड अप किया जा सकता है। उसे जीवात्मा भी सद्गुरु के शरण में आकर वो आस्ते आस्ते अपने प्रवृत्ति को सत्वगुण तक ले सकता, सत्वगुण की स्थिति पर पहुंच सकता है। इसलिए जन्म ना जाए तो शूद्र संस्कार दीजिए उच्चते, जन्म से ही शूद्र है लेकिन संस्कार के द्वारा आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करके उनकी द्वारा जब वो दीक्षा प्राप्त करता है, आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ करता है, तो फिर इसको इसको दीजो कहा जाता है, दोबारा जन्म लेता है। पहले तो शुक्र जन्म माता पिता से प्राप्त किया था, दोबारा सदगुरु के माध्यम से फिर आध्यात्मिक जन्म होता है। इसलिए आध्यात्म गुरु उसके नाम परिवर्तन करते हैं और फिर उसको वेद अध्ययन के अधिकार देते, शास्त्र गीता भागवत पढ़ने का ये अधिकार उसको देते हैं, शिवग्रहण की अर्चना करने का अधिकार दिया जाता है। तो फिर वो वेद पठेत भवेद विप्र, जो वेद पढ़ता है, थियोरिटिकल नॉलेज उसको सब प्राप्त होता है, सत्वगुण की वृद्धि होता है, तो विप्र के स्तर पर आता है। इसके आगे कहते कि ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब ये वैदिक ज्ञान को सीखा, जो कुछ सदगुरु से शिक्षा प्राप्त करके सत्वगुण के स्तर पर आया, उसको जब फिर जीवन में उतारता है प्रैक्टिकल, तो फिर उसको क्या कहते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति इति। वो केवल थियोरिटिकल नॉलेज नहीं जानता, इसको प्रैक्टिकल भी अनुभव है, प्रैक्टिकल जीवन में इसको उतारता है, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। थियोरेटिकल नॉलेज जानने वाला व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म ब्रह्म को अनुभव किया है, मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, इसको के अनुभव भी किया है, पता है इसको, जो ऐसे अनुभव करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण के स्तर पर आता तो फिर वो सप्तगुण में माना जाता, सप्तगुणी व्यक्ति। लेकिन इससे परे भी हमें भी केवल ब्राह्मण बनने से ही सब कुछ नहीं है, इसके परे भी आना चाहिए। उसके परे कौन सा स्थिति? उसको वैष्णव बनना चाहिए, वैष्णव अर्थात तीनों गुण की परे वर्णाश्रमी। ये तो चारों गुण माने तीनों गुण, जो चार वर्ण है शूद्र तमोगुण में, रजोगुण में क्षत्रिय, वैश्य तम रज मिश्रित, और ब्राह्मण सत्वगुण में रहता है। लेकिन भक्त जो होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, इससे परे रहते हैं, वो सतगुण सत रज तम की परे। ऐसे गुण में कैसे आएगा, त्रिगुणातीत कैसे बनेगा, कैसे तीनों गुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त करेगा? जब तक व्यक्ति तीनों गुण के प्रभाव से स्वयं को मुक्त नहीं करेगा, तभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये कहते भगवान ने ये भी कहा कि सत्वगुण की प्राधान्यता कहाँ दिखाई जाता है, किनके पास में दिखाई जाता है सत्वगुण की प्राधान्य? ये तो मैंने वर्णाश्रम के बारे में कहे, लेकिन जो देवता देवता जोनी, मनुष्य जोनी, राक्षसनी जोनी व अन्य निम्न जोनी के बारे में चर्चा करेंगे तो सत्वगुणी किसको माना जाता है? देवताओं को सत्वगुणी माना जाता है। लेकिन देवताओं के पास में इसका मतलब नहीं कि इनके पास रजगुण और तमगुण नहीं है, सत्वगुण का प्राधान्यता है, और साथ में ये दोनों मिक्स रहते हैं। कौन सा? रजगुण तमगुण, ये मिक्स रहते हैं, लेकिन प्राधान्यता है सत्वगुण। मनुष्य के पास में रजगुण प्राधान्यता है, हमारे पास रजगुण प्राधान्य, लेकिन साथ साथ ये दोनों भी है। कौन सा? तम, सत्वगुण भी है, दोनों साथ मिक्स में है। और जो निम्न, इसलिए भगवान कहते कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिश्च अधोगच्छति तमसा। और निम्न जोन में राक्षस आदि भगवान जो निम्न लोक में रहते हैं तो तमोगुणी माने जाते हैं, लेकिन उनके पास में कभी कभी सत्वगुणी किसी विशेष स्थिति में दिखाई पड़ता है, जैसे प्रहलाद महाराज वो। लेकिन भक्त जब हो जाता है तो तीनों गुण में, यदि प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म लिए हैं लेकिन इनको नहीं कहा जाए कि तमोगुणी है, राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी तीनों गुण के परे, क्योंकि भगवान की भक्ति की है। योमान अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है वो तीन गुणों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त कर लेता है, वो ब्रह्म में स्थित हो जाता है, भगवान ने कहा था। तो इसलिए भगवान की भक्ति जो करता तो तीनों गुण के प्रभाव से वो मुक्त हो सकता है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, ये तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त होकर जो गुणातीत अवस्था में पहुंचेगा तभी उसको शुद्ध भक्त माने जाएगा। यदि हम एक ही जन्म में, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे पास में तमोगुण है व रजोगुण है, रजोगुण है हम, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं हम सत्वगुणी बनेंगे, सत्वगुणी बन के फिर भक्ति करेंगे, सत्वगुण पहुंचे पहले सत्वगुण प्राप्त करें, ब्राह्मण बनेंगे फिर वैष्णव बनेंगे, तो हो सकता है हम ऐसे ही प्रयास करते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि आचार्य लोग कहते हैं कि वही जो गुण आपके पास में इसको भगवान की सेवा में लगाओ, आर्टिफिशियली आप बनने के लिए कोशिश करोगे फिर आपके पास में रजोगुण प्राधान्य है, आप पूरे रजोगुण को समाप्त करना चाहोगे वो पूरे जीवन बीत जाएगा, वो समाप्त होना संभव नहीं है। लेकिन यदि इसी को आप भगवान की सेवा में लगाओगे वो फिर तीनों गुण की परे हो जाएगा। जैसे कोई कामनाएं है, अर्थात भक्ति के अर्थ ही किसी रूप में हम मन को भगवान के चरण में स्थिर रखना। नारद मुनि कहते कि जेन केन प्रकारेण कृष्णे मन निवेश है, किसी ना किसी उपाय से मन को भगवान के चरण में स्थिर रखना। कामाद गोप्या है भयात कमस, द्वेषात चैवादय नृप, और समंधा दुष्णय, स्नेहा जुयंग, भक्त वयंग विभु। नारद मुनि कहते युधिष्ठिर महाराज को कैसे भी भगवान के चरण में मन को स्थिर करना ये भक्ति है। गोपी लोग माने भगवान के चरण में मन को स्थिर करना यही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य यही है भगवान के चरण में मन को स्थिर करना। कोई कामी पुरुष है तो कामनाएं भरा हुआ तो वैसे विशेष रूप में इनको गोपियों को बाबरा जो है फॉलो करना चाहिए, कृष्ण को देखकर कृष्ण के प्रति आकर्षित थे। कौन? गोपियां। उनको ये पता नहीं भगवान है कि क्या है, लेकिन एक सुंदर बालक युवक देखकर ये सब लड़कियां थे तो उनके आकर्षित रहे, लेकिन वो किसी भौतिक व्यक्ति के प्रति आकर्षित नहीं रहे। किसके प्रति आकर्षित रहे? कृष्ण के प्रति। इसलिए उनके पास में कामनाएं होने पर भी उसको दिव्य माना कर तीनों गुण के परे, किंतु भगवान के प्रति उनके आकर्षण है, दूसरे के प्रति नहीं है। क्रोधी यदि कोई भी है रजगुण के प्रभाव से साधारण काम क्रोध दोनों उत्पन्न होते, क्रोधी व्यक्ति है हनुमान जैसे रजगुण के प्रभाव को उन्होंने सेवा में लगाया, रामचंद्र की सेवा को लंका को जलाया है। जो क्रोधी नहीं होगा तो फिर ऐसे काम उदंड का युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने रजगुण को उद्रेक करने के लिए अर्जुन को उसको उसकाया और कहे कि अरे देखो इसको मारो, इसको किसको, ये सब तुमको मारने के लिए खड़े हैं, कौन धृतराष्ट्र के पुत्र और ये सब शत्रु मारे खड़े हैं तुमको युद्ध का मैंने तुमको वध करने के लिए, और तुम बोलते कि इनको मारेगा नहीं, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय। यदि कोई रजगुण के प्रभाव से नहीं आएगा तो युद्ध नहीं कर सकता है, कोई फिजिका कुछ उदंड कार्य नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान ने इसको उसका है। लेकिन तो लेकिन क्षत्रिय होते होने नाते हैं भी अर्जुन उसको भगवान की सेवा में लगाए, हनुमान जी इसको राम जी की सेवा में लगाए, तो इसलिए वो दिव्य माना गया। कोई हनुमान जी की निंदा करता है लंका जला दिए, नहीं वो कहे बहुत लोगों को आनंद आता है सुनने से, और हनुमान की कथा कि लंका कांड कैसे लंका को जलाए हनुमान जी, बड़ा खुश रहते हैं। इसलिए हम जब पास में यदि रजगुण भी है तो उसको भगवान की सेवा में लगा जा सकता है। सत्वगुण भी भगवान की सेवा में सत्वगुण है तो उसको पढ़ाई करना है बाहर, यहाँ ब्राह्मण कल कर्म यहाँ आके कर सकता है। लेकिन इसको जब भगवान की सेवा में लगाएगा तभी गुणों की परे होगा, भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा तो सत्वगुण में है और वो कर्मकांड यज्ञ करेगा, ठीक है ब्राह्मण, लेकिन कर्मकांड यज्ञ करेगा तो कर्मबंधन से छूटेगा नहीं जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेगा। इस प्रकार यदि वह किसी भी रूप से मन को भगवान के चरण में स्थिर रखने के लिए नारद मुनि कहते कि जैसे गोपियां लोग ने कामनाओं के कारण बा कृष्ण प्रति आसक्त थे, कामाद गोप्या, कंस किस लिए भगवान के चरण में मन को स्थिर रखा था, भय से, भयभीत होकर, कंस भयभीत था हमेशा कि भगवान ने ये कृष्ण मुझे वध कर देगा, इसलिए भयभीत होकर कृष्ण 24 घंटे कृष्ण को चिंतन करता था, कौन कंस, भयात कंस, द्वेष के कारण चैबादयी रूप शिशुपाल और दंतवक्र दोनों 24 घंटे वो भी कृष्ण की चिंतन करते थे द्वेष के कारण। शिशुपाल का द्वेष तो बढ़ गया ज्यादा जो भगवान ने रुक्मणी को हरण कर ली स्वयंवर सभा में, किसके साथ शादी होने वाला था रुक्मण के, शिशुपाल के साथ, अब भगवान जो हरण करके ले गए तो उसका क्रोध और बढ़ गया, तो इसलिए ईर्ष्या के कारण भगवान के साथ वो दोनों द्वेष करके हमेशा चिंतन करते थे। द्वेषा चैबा संबंधा वृष्णय, संबंध के कारण वृष्णिवंशी जादु जदुकुल के लोग को सोचते थे कि कृष्ण हमारा वंश की व हमारा फैमिली मेंबर है, उसलिए मन की कृष्ण के चरण मन को निवेश करते थे और कहते कि हे पांडव, आप लोग जैसे पांडव युधिष्ठिर महाराज आप सब भगवान को अपने संबंधी सोचकर ने स्नेह के कारण आपके मामा की लड़का सोचकर स्नेह के कारण मन को निवेश करके रखे हो। नारद जी कहते हम जैसे भक्त हैं हम भगवान के चरण में कैसे मन को निवेश करते हैं, भक्तंग भक्ति में शुद्ध भक्ति, भक्तंग वयंग विभो, हम भक्त हैं इसलिए जो भक्त होते हैं नारद मुनि को फॉलो करते हैं। ये उदाहरण देने पर भी नारद मुनि कहते हैं कि जो भक्त है वो नारद मुनि को फॉलो करते हैं, लेकिन नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं। भक्ति को प्रचार करने के लिए ये सत्यावेश अवतार है, कौन नारद मुनि, 24 अवतार में से एक अवतार नारद मुनि भी है, चार कुमार विशेष रूप में ज्ञान के प्रचार के लिए, दिव्य ज्ञान के अवतार को प्रचार करने के लिए कुमारों के अवतार है, और शुद्ध भक्ति को प्रचार करने के लिए भगवान ने किसको विशेष शक्ति दिया, नारद जी को, इसलिए नारद मुनि सत्यावेश अवतार भक्ति प्रचार करने के लिए। तो उन्होंने कहते कि इसलिए जब तीनों गुण के परे जाना चाहता है इसको शुद्ध भक्ति करना आवश्यक है। शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने कहते कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान के सेवा में लगाना इसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। जब समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान के सेवा में लगाएगा व्यक्ति फिर तीनों गुण की परे जाएगा, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण की परे आ जाएगा। अर्थात हमारे पास में जो गुण है जो गुण है इसको त्यागने के लिए आर्टिफिशियली कोई क्षत्रिय है ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश करने से बन सकता है बहुत, लेकिन कठिनाई से, लेकिन वो आसान से वैष्णव बन सकता है, जो वैष्णव बन जाएगा ऑटोमेटिकली ब्राह्मण के गुण उसके पास दिखाई पड़ेगा। इसलिए हमारा काम है कि हम वैष्णव बनने के लिए कोशिश करें, अर्थात हमारे पास में जो गुण है इसको भगवान की सेवा में लगाना, ये वैष्णव है। लेकिन जो वैष्णव कोई बन जाता है तो ब्राह्मण के गुण अपने आप उसके चरित्र में दिखाई देता है, इसको आर्टिफिशियली ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य रावण की तरफ ब्राह्मण बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य प्रहलाद की तरफ भक्त बनना है। चाहे हम असुर कुल में जन्म हुआ है, गिरे हुए व्यक्ति, लेकिन जब हम प्रहलाद की मार्ग को नारद मुनि से, प्रहलाद जी कहाँ शिक्षा प्राप्त किए, नारद जी से, नारद जी के अनुगमन करेंगे फिर हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। और जब कोई वैष्णव बन गया तो फिर उसके पास में और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ये सारे वैष्णव का गुण उसके पास आ जाएंगे। लेकिन जो कोई आर्टिफिशियली कुछ करना चाहते हैं तो विश्वामित्र की तरफ, विश्वामित्र बोला कि नहीं मैं क्या बनूंगा, वो क्षत्रिय था, विश्वामित्र क्षत्रिय था, क्षत्रिय जो था, लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहता था, वशिष्ठ की पोजिशन में, वशिष्ठ ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि बनना चाहता था, इसलिए आर्टिफिशियली ध्यान जो करे है, लेकिन उसकी जो स्वभाव है क्षत्रिय का, रजगुण को संयमित कर नहीं कर पाया है। रजगुण के प्रभाव से काम, जो कामनाएं प्रकट होती है, काम क्रोध नहीं, जब आया, कौन आया, मेनका आई, थोड़ा सा ड्रेंस के सामने तोड़ गया ध्यान, है ध्यान तोड़ गया। तो इसलिए आर्टिफिशियली यदि कोई भी हाँ ऐसे ही प्रयास करेगा वो संभव नहीं है। हो सकता है कोई शूद्र वैश्य या क्षत्रिय आर्टिफिशियली ब्राह्मण बनने के लिए प्रयास करेगा, उसमें कई बाधा आ सकता है। लेकिन वही व्यक्ति यदि भक्ति करने के लिए चाहेगा, भगवान की शुद्ध भक्ति करेगा, वैष्णव बनेगा, ब्राह्मण के गुण उसके पास में दिखाई पड़ेंगे, अपने आप दिखाई पड़ेंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्ति योग को फॉलो करो, स्त्री शूद्र तथा वैश्य तेपी जानती परांगति मांग ही प्राप्त उपाश्रित्य स्ते अपिशु पाप जनोय। स्त्री वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती परांगति, जो पाप जोनि को प्राप्त किए वाले तमगुण रजगुण के द्वारा प्रभावित होकर भी कोई स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, यदि वो भक्ति योग को आश्रय किया, मेरी शरण में आया, फिर वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कोई ब्राह्मण होते हुए भी, सत्वगुण में होते हुए भी, यदि भक्ति योग को स्वीकार नहीं किया, भक्ति नहीं, भगवान की भक्ति नहीं किया, वो भगवत धाम नहीं जा सकते। इसलिए दुधारी ब्रह्मचारी को रिजेक्ट किया, कौन, महाप्रभु ने रिजेक्ट किया था। दूध पी के रहता था, सत्वगुण में रहता था नवद्वीप में, लेकिन गौरांग महाप्रभु के डांस देखना इच्छा था। शिवास ठाकुर को अनुनय विनय करने के कारण शिवास ठाकुर छुपा के रख दिए घर में उसको, लेकिन महाप्रभु जो नृत्य करने के लिए आए, थोड़ा डांसिंग करते थे और फिर बोले आज इसके अंदर कोई अनक्वालिफाइड व्यक्ति है, कोई अभक्त है, आज नृत्य में मुझे आनंद नहीं आता है, थोड़ा फिर बंद, फिर नृत्य फिर बंद। तो शिवास ठाकुर समझ गए कि भगवान को पता चल गया, कहे कि महाप्रभु ऐसा ही एक ब्रह्मचारी नवद्वीप का है, और वो क्या करता, दूध पी के रहता है, कोई ग्रेन भी खाता नहीं है, वो सब समय सत्वगुण में रहता है, सत्वगुण में रहता है, और उसके पास में कोई रजगुण तमगुण कभी दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत बड़े सदाचारी है, सत्य बोलता है, सब कुछ सद्गुण उसके पास से है, उसके मन में थोड़ा आपकी नृत्य देखने की इच्छा था, इसलिए मैं इसको रखा हूँ, आश्रय दिया हूँ। वो महाप्रभु कहे कि गेट आउट करो इसको, ऐसे अभी निकालो यहाँ से, हैं, दूध और केला खाए, सब दूध पी के मेरे दर्शन नहीं हो सकते, मेरे भक्ति नहीं है, जब तक वो शरणागत नहीं होता है, वही शूद्र है, अहंकारी, मैंने कोई शूद्र होगा हो कि भी नीच कुल में जन्म होते हुए भी, तमगुणी रजगुणी होते हुए भी, यदि भगवान के शरण में आता है वो दिव्य बन जाता है। लेकिन यदि ब्राह्मण घर में जन्म लिया है और ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी वो भगवान के शरण में नहीं आता है, रावण ब्राह्मण था लेकिन भगवान की शरण में नहीं आने के कारण उसका सर्वनाश हुआ, विश्रवानंदन है, विश्रवा ऋषि के पुत्र था। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से यानी तीनों गुण की परे आ सकते, रजगुण तमगुण प्रभाव और सतगुण के प्रभाव को, इसको अतिक्रम करके भगवान, इसलिए अर्जुन कहते कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, हे अर्जुन तीनों गुण की परे उठो, इसके परे उठो। कोई बात नहीं, कोई भी कितने गिरा हुआ व्यक्ति यदि भगवान के शरण में आता है वो दिव्य बन जाता है। अब भगवान के शरण में नहीं आने से भी सारे सद्गुण होते हुए, कोई व्यक्ति के पास में सारे सद्गुण है, ब्राह्मण का गुण है, लेकिन भगवान के शरण में नहीं आता तो उसके सारे गुण बेकार हैं। लेकिन कोई व्यक्ति के पास में सारे बदगुण भरा हुआ है, बचपन से शूद्र व और मलक्षा जवान घर में भी जन्म लिया है, लेकिन यदि भगवान के शरण में आया, सद्गुरु स्वीकार करते हुए भगवान के शरण में आया, तो वो फिर भक्त बना, तो उसकी स्थिति सर्वोच्च माना जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया पाश्चात्य जगत में, मृणाल को जवन को भी भक्त बनाया और इनको आचार्य के पद पर भी ले आए, इनको कितनी ऊपर उठाया। लेकिन यहाँ भारत में ही लोग पड़े हुए ब्राह्मण घर में जन्म लिया, बड़े अहंकार अहंकारी बनकर के हम ब्राह्मण घर में जन्म लिए, हम बहुत महान है, और फिर वो ऐसे ही गिरे हुए स्थिति में पड़े रहते, अहंकार उनके मन में रजगुण तमगुण भी भर जाता उस उल्टी। तो इसीलिए हमारा जो कर्तव्य है भक्ति करना, भक्ति के माध्यम से केवल हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं। तीनों गुण के प्रभाव, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण, तीनों गुण के प्रभाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? शुद्ध भक्ति के माध्यम से। और अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार का अर्थात वेश्यावृत्ति है। भगवान कहते हैं वेश्यावृत्ति नहीं, जैसे कोई सती स्त्री एक ही पति में मति को रखता है, ऐसे ही जो भक्त है तो उसको एक ही भगवान में मति रखना, किस में? भगवान श्री कृष्ण में, केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद में, जो शरणागत होकर उन्हीं को एकमात्र गति स्वीकार करता है, तो अन्य अन्य देवताओं के शरण में नहीं जाता है, तो व्यक्ति उसको अव्यभिचरणी भक्ति कहते हैं। जानते हैं भगवान ही मेरी एकमात्र पति, किसी भी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी मुझे चाहिए, प्रारंभ से मेरे मन में सकाम इच्छा है तो कुछ भी मुझे चाहिए तो केवल मांगूंगा, किसको मांगूंगा? कृष्ण को, दूसरों को नहीं। अन्य देवताओं के शरण में नहीं जाऊंगा, सोमवार को थोड़ा शंकर जी में पानी चढ़ाना, मंगलवार को क्या करना, हनुमान जी के पास थोड़ा लगाना मन लिया, बुधवार को फिर थोड़ा जाके गणेश जी का, गुरुवार को थोड़ा शंकर लक्ष्मी की पूजा करना, शुक्रवार को कोई संतोषी माँ अनुकूल चंद्र कोई सब बंगाल में है, और शनिवार को शनिश्चर की पूजा करना, रविवार को चंद्र को पानी चढ़ाना, नहीं सूर्य को पानी चढ़ाना, तो ये करोगे तो भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्य मुक्तयिष्यामि मां सुच, समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। तो इसलिए अव्यभिचारिणी भक्ति, भगवान कहते यो मन अव्यभिचारिण भक्ति योगे न सेवते, स्वगुणान समति चैतान, वो तीनों गुण को अतिक्रम कर लेता है, सत्वगुण के प्रभाव से, रजगुण तमगुण के प्रभाव से अपने को मुक्त कर सकता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमको यही शुद्ध भक्ति सिखाया है, कृष्ण भक्ति सिखाए हैं, कृष्ण भक्ति सिखाए, जब भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आता, उनके शरण में आता है, शुद्ध भक्ति करता है, वही केवल तीनों गुण के प्रभाव से मुक्त हो सकता है, यही जीवन का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? जीव का क्या दोष है? जो कर्म कर्म जो किया तो उसको स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो उसके दोष नहीं। हाँ, तो इसलिए कहते हैं, इसलिए भक्ति जरी ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो जो साधु के संग करने से होगा, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, ऐसे भ्रमण करते करते कई जोनी में, लेकिन यदि इसको साधु वैद्य मिल गया, ये आध्यात्मिक डॉक्टर है, कौन? साधु। जैसे हमारा कोई भौतिक शरीर में कोई बीमारी होता तो डॉक्टर पास जाते हैं, ऐसे बद्ध जीव को जो बीमारी है तीनों गुण के द्वारा प्रभावित होकर ऐसे बार बार जन्म के चक्र में भटकता है, तो यदि किसी साधु वैद्य मिला, इसलिए इसको वो वैद्य के आप स्पिरिचुअल डॉक्टर जो है साधु की ढूंढ करना चाहिए, साधु के पास जाने से फिर साधु वैद्य उसकी बीमारी को ठीक करता है। तो इसलिए गुरु किस चरण में जाना चाहिए, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए, वा ब्रह्मांडे भ्रमिते यदि ने ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, इसलिए इसको कहते भाग्यवान, जिसको सदगुरु प्राप्त हुआ है, गुरु की चरण में आश्रय लिया है, वो साधारण जीव नहीं है। कैसा जीव है? भाग्यवान जीव। किसी भाग्यवान जीव को ही सदगुरु प्राप्त होते हैं, सबको नहीं मिलते, वो भाग्यवान है। गुरु और कृष्ण के प्रसाद दोनों की कृपा होने से भक्ति की लता मिलते बीज मिलता है। कृष्ण की गुरु की कृपा से कृष्ण कृष्ण के चरण में भक्ति करना सीखता है, और कृष्ण गुरु भी मिलते हैं तो कृष्ण की कृपा से। जिस जीवात्मा को जीवात्मा मन में कभी कभी साधु का कृपा इंडिपेंडेंट होता है। साधु कभी कभी स्वयं इच्छा से भी बद्ध जीव को उद्धार करता है, भगवान की करुणा न होने पर भी जीव के प्रति साधु कृपा करके उसको भक्ति में जोड़ देता है। प्रभुपाद जी पाश्चात्य जगत में गए और तो भक्ति जो प्रचार करने लगे तो भक्ति रसाम सिंधु पढ़े तो भक्ति रसाम सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि प्रारंभ से कि यदि पूर्व जन्म में कोई भक्ति नहीं किया है तो इस जन्म में भक्ति का प्रारंभ नहीं हो सकता। पूर्व जन्म में कुछ सुकृति था उसके पूर्व तभी तो भक्ति प्रारंभ किया, तो इसलिए पाश्चात्य जगत में जो भक्ति का प्रचार होने लगा तो वो विदेशी लोग सब आके प्रभुपाद जी कहने लगे कि प्रभुपाद जी हम तो सब भक्ति कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब हम पूर्व जन्म में सब कुछ कुछ ना कुछ सुकृति किए थे, कुछ भक्ति किए थे, तभी तो इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहे कि नो यू आर इन नील, कुछ भी नहीं था तुम्हारे, तुम्हारे पास में कोई भी सद्गुण नहीं था, सब कुछ केवल मेरे अहित की कृपा से तुमको प्राप्त हुआ। कभी कभी महान संत पुरुष अहित की कृपा करते हैं, वाल्मीकि की कोई सुकृति नहीं था है ना, किसका, दशरथ रत्नाकर का, लेकिन नारद जी की कृपा से फिर वो भक्ति करने शुरू की है। इस प्रकार कभी कभी जीवात्मा को कोई सुकृति नहीं होता है लेकिन एक विशेष संत की कृपा होने से फिर भक्ति में शामिल होता है। पाश्चात्य जगत में कोई सुकृति नहीं था लेकिन प्रभुपाद जी ने कृपा किया तो फिर भक्ति में आए। एक शुद्ध भक्त की इच्छा हुई कि ये बद्ध जीव कैसे उद्धार होंगे, इनको उद्धार करने की भावना आया तभी उद्धार होंगे।
ब्राह्मण के घर में किसी का जन्म होता है तो आप बता रहे थे इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कि उसने ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर जो ब्राह्मण के घर में जन्म होता है किसी जीवात्मा का वो भी
इंपोर्टेंस इंपोर्टेंस नहीं कहा गया। ब्राह्मण के घर में जन्म होकर यदि वो भक्ति नहीं करेगा उसका ब्राह्मण जन्म बेकार है। कोई डॉक्टर के घर में जन्म लिया है तो डॉक्टर बाप को देखते देखते हो सकता है MBBS पढ़ेगा फिर वो डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो यदि लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेकर भी यदि वो भक्ति नहीं किया तो ब्राह्मण का जन्म लेना कोई फायदा नहीं, इसलिए रावण का उदाहरण दिया गया। विश्वानंदन है लेकिन रावण का भगवान के शरण में नहीं आया तो उसके ब्राह्मण का क्या फायदा जन्म लेने का।
तो जैसे वो ब्राह्मण के घर में आता है वो पिछले जन्म पिछले गुण और कर्मों के आधार पर ही आता है, मतलब जो पिछले गुण और कर्म के अच्छे थे तभी वो ब्राह्मण किसी ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ जीवा आया। तो फिर जैसे हम जैसे यहाँ अभी भक्ति जैसे हम क्या अभी आपने कहा था कि पिछले जन्म की स्वीकृति है तब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, तो पिछले जन्म की ऐसे कर्म थे जो इस ब्राह्मण के घर में आया हो अब जो है उसके कर्म, तो हम उसको जन्म से ब्राह्मण क्यों नहीं मानते, क्या क्यों नहीं हम कहते कि उसको जो उसमें जो गुण है वो चीज है वो पिछले जन्म वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, मतलब
पूर्व जन्म के शुक्र, लेकिन अभी कलि युग में कोई ब्राह्मण का परिवार है नहीं, सोचता कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूँ लेकिन ये घर ब्राह्मण का नहीं है, शूद्र का है। ये घर के जो जिसको ब्राह्मण कहते वो ब्राह्मण का वृत्ति नहीं कर, वो मांस खाता है, धरो उसका नाम में लगा गया कि मिश्र है पंडा है टाइटल जैसे ब्राह्मण का लगा गया और ब्राह्मण का घर में सोच रहा है कि मैं ब्राह्मण ब्रज में मेरा बांकी बिहारी के गोस्वामी परिवार में जन्म लिया है कहता है लोग हैं, लेकिन वो करता क्या कानपुर का फैक्ट्री में, कानपुर में किस फैक्ट्री में नौकरी करता है और कभी कभी शराब भी पीता है तो ये ब्राह्मण है। भगवान कहेगी गुण कर्म विभाग से, अर्थात कलि युग में कोई ब्राह्मण है ही नहीं, ब्राह्मण का फैमिली नहीं है, चाहे वो बोलता है कि आटे भिजे में ब्राह्मण, इसलिए कहते सारे शूद्र है, तो ब्राह्मण के कर्म करेगा तभी तो ब्राह्मण होगा। भगवान इसलिए कहे कि जन्म बने क्या गुण कर्म विभाग से चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, प्राचीन का अन्य युग में गुण कर्म उनके ब्राह्मण का था, जन्म से ही वो जन्म केवल जो ब्राह्मण होते तो गुण भी तो उनका था ब्राह्मण का, कर्म भी ब्राह्मण का करते थे, लेकिन कलि युग में सब शूद्र का काम करते हैं। ब्राह्मण घर में जन्म हो कि इसको इंजीनियर बनने की इच्छा होता है, इंजीनियर की याद है प्रभुपाद कहिए इंजीनियर सारे शूद्र हैं, तो वो ब्राह्मण के उसके ब्राह्मण का कर्म अच्छा नहीं लगता है, भगवान की पूजा करना भागवत पढ़ना भाई ये सब नहीं, वो आके कहीं जाएगा इंजीनियर बनना चाहता है, विश्वकर्मा का चेला बनना चाहता है, तो इसलिए क्या करेगा कहाँ से ब्राह्मण कहाँ से रह गया, ब्राह्मण के फैमिली होने से ब्राह्मण थोड़ी हो जाता है, खाली फैमिली वो चल रहा है अनसिस्टर तो, लेकिन वो तो कर्म तो नहीं कर रहे ना कोई ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण है लेकिन उसको कोई वेद का तो एक कोई मंत्र भी पता नहीं होगा ना, यज्ञ करना जानता ना कुछ कुछ ब्राह्मण का कर्म कर रहा है तो फिर ब्राह्मण कैसे तो जन तो ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण ठीक टुकड़ संस्कार रहता, लेकिन आजकल कोई ब्राह्मण का फैमिली है ही नहीं, कोई ब्राह्मण घर में हर सब किसलिए ब्राह्मण क्या करता था, पहले हर ब्राह्मण के घर में क्या रहते थे, सालग्राम भगवान होते थे, ब्राह्मण घर में सालग्राम रहते थे, 500 साल पहले भी अतिथि था। चैतन्य महाप्रभु इसलिए ब्राह्मण के घर में खाते थे क्योंकि उनके घर कम से कम सालग्राम के पास में क्या प्रसाद भोग लगाते थे। ब्राह्मण कोई आमिषहारी नहीं होते थे, ब्राह्मण के घर में कभी मछली मांस ये सब मदिरा ये सब नहीं है, वही स्वप्न ही ब्राह्मण पूरा सप्तगुण में रहते हैं, आहार भी शुद्ध रहता है, सालग्राम को अर्पण करते हैं और फिर खाते हैं। आजकल ब्राह्मण घर में कोई डटी मिलेगा देखिए, देखो पहले कोई रखी दिया होगा तो पहले कई जो कोई उधर उसका पीढ़ी में कहीं आया तो वो ऐसे ही होता होगा पूजा, लेकिन उसके आहार आचरण कोई शुद्ध नहीं, ब्राह्मण का नहीं है आचरण उसके नहीं है, कर्म नहीं है।
सालिग्राम रखते हैं और आप मांस मछली नहीं खाते और उससे आप नियमों का पालन करते हैं, उन्हें मानना चाहिए कि वो ब्राह्मण है।
हाँ, यदि भगवान को ब्रह्म जानाती है ब्राह्मण जो जानते हैं तो ब्राह्मण है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव है जन्म का, लेकिन यदि सच्चे ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा उसके प्रभाव आएगा। कर्म नहीं करेगा तो ब्राह्मण से कैसे कर्म होगा, जन्म से केवल सब कुछ नहीं होता है। भगवान कहते हैं गुणा कर्म विभाग से, उसके व्यक्ति पास में गुण भी होना चाहिए कर्म भी होना चाहिए, कैसे ब्राह्मण का, ब्राह्मण का गुण कर्म करता है तो ब्राह्मण, लेकिन जो वैष्णव है तो अल्टीमेटली उसके ब्राह्मण का गुण आएगा, क्योंकि वैष्णव जो होता है समा धमा तो पहले ये क्या तिथि क्षेव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना मजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण, साधु के पास का जो लक्षण है उसके 26 वैष्णव के गुण उसके पास दिखाई पड़ेगा तो व्यक्ति अपने आप सारे ब्राह्मण की क्वालिटी का अधिकारी बनता है। उसको आर्टिफिशियली ब्राह्मण बनने के लिए कोशिश कर रहे सारे को विश्वामित्र की तरफ तो स्वीकार नहीं किया, इसको वशिष्ठ कितनी हजार साल के बाद उसको स्वीकार किया ब्राह्मण, उसको कहा कि तुम सागर ब्रह्मा जी के पास गया कि देखा वो विश्वामित्र तपस्या करके बोला कि मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, इसी जन्म में ब्राह्मण बनूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है ब्राह्मण बना, लेकिन जब वो स्वीकार कर लेगा कौन वशिष्ठ तुमको स्वीकार कर लेगा ब्राह्मण तो बनेगा, तपस्या करके गुस्सा आता था वशिष्ठ के पास, मैं ब्राह्मण हूँ कि नहीं बोलो मुझे, वशिष्ठ कहते नहीं तुम ब्राह्मण नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ब्राह्मण का गुण है नहीं, तुम अभी तक भी राजर्षि है, जब भी आया इसको उदाहरण वही उप का उसको संबोधन किया कि राजर्षि विश्वामित्र, वो कहते कि नहीं आपको ब्रह्मर्षि बोलना, बोले ब्रह्मर्षि तुम ब्राह्मण का गुण है नहीं तो कैसे बोलना है? तो इसलिए ब्राह्मण का गुण नहीं जब तक नहीं होगा ब्राह्मण कैसे बनेगा, चाहे कितना तपस्या कर ले बहुत कुछ करेगा लेकिन वशिष्ठ स्वीकार चाहे वो तपस्या के बल पर उनके 100 पुत्र को भी मार डाला कौन, तो इसीलिए तो ब्राह्मण नहीं क्योंकि इस क्रोध को गमन नहीं हुआ अभी तक तो मार दे पुत्र को है? तो जब तक ये सब काम क्रोध लोग ये सब सम दम सब आएगा ब्राह्मण का गुण इंद्रिय संयम मन का संयम तो भी वो ब्राह्मण कहलाएगा। जब फिर वो वशिष्ठ के चरण में जाकर गिरा फिर वो वशिष्ठ कहेगी ठीक अभी तुम ब्राह्मण बना क्योंकि मर्डर करने के लिए प्लान किया था किसका, वशिष्ठ को वध करने के लिए विश्वामित्र एक दिन अस्त्र लेकर एक तरबाल लेकर छुपा था जोशना रात में बैठे थे शिष्य के साथ, और लेकिन वशिष्ठ बच के उसकी प्रशंसा करते थे किसका विश्वामित्र, बोले चांदनी की रात में जैसे जोशना सर्वत्र फैला हुआ है आज विश्वा में ये पृथ्वी में एक व्यक्ति का तपस्या में है तपस्या के बल पर सारा पृथ्वी ऐसा ही जसोसी है, कौन है ऐसा ही जसोसी बनाया पृथ्वी को विश्वामित्र की तपस्या। विश्वामित्र सुन रहा था अरे ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है इसका 100 पुत्र को भी मार डाला है और फिर भी वो मेरी प्रशंसा और मैं उसको वध करने के लिए अस्त्र लेके बैठा हूँ, तुरंत जाकर चरण में गिरा और रोने लगा है तो उसका क्रोध समाप्त हो गया। और विश्वामित्र ने वशिष्ठ देखे कि अभी ये संयमित इसका इंद्रिय संयम हो गए हैं, ये संयम हो गया अभी वो काम क्रोध से मुक्त हुआ तभी कहे कि ब्रह्मर्षि उठो हैं, तभी ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। ब्राह्मण बनने के लिए एक ही जन्म में बहुत आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा विश्वामित्र की तरफ, क्यों कठिन कठिन परिश्रम करेगा, सहज एक भक्ति करो भगवान की भक्ति करो, आपके पास में जो गुण है उसको भगवान की सेवा में लगाओ हैं, क्षेत्रीय मैंने रजगुण है तो भगवान की सेवा में लगा, हाँ बस तमोगुण भी है तो भगवान की सेवा में लगा सकते हैं है? तुम आपको तमोगुण कैसे लगाओगे, सो की कैसे भगवान की सेवा में लगाओगे, तमोगुण को भगवान की सेवा कैसे लगाओगे, वो था मुचुकंद था भगवान की सेवा में लगाया क्या किया, सोया हुआ था उसको वरदान लिया जब युद्ध मैंने देवता क्या वर चाहिए बोला कि मुझे वर दो कि मैं सोते रहूं यदि मेरे निद्रा में कोई क्या बाधा देगा और मैं इसको देखते ही वो कोई भी हो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो सोया हुआ था बस, लेकिन भगवान के भक्त था इसलिए भगवान कहे कि इसका सोने का को भी ये जो है इसको भी सेवा लेना चाहिए इससे। उसने काला जब कौन भागा रहा था, भगवान के पीछे जा रहा था तो भगवान ने गए जाकर जानते कि मुचुकंद और उसी गुफा में घुस गया, छुप गया। तो पीछे गया तो सोचा कि आके यहीं छुप गया, ये कहाँ यही सो, यही सोया हुआ सही थे, यही कृष्ण है, आके घोड़ के सो गया गुफा के अंदर, तो यही घुसा और कहीं इधर तो कोई है नहीं है, जाके लता लगाया लात। बोला अच्छा सो जाने से छोड़ दूंगा, मार लात लगाया तो काला जवन था, उठा वो उठ के देखा, देखते ही वो जड़ी भस्म हो गई। भगवान ने उसको उपयोग कर लिया, इतने साल सोया हुआ था तो वो सोने का भी बर मांगा था कि सोते रहूँ तो उसके भगवान के, लेकिन यदि थोड़ा भी भगवान के चरण में उसकी मति है तो वो सोने का भी भगवान स्वीकार कर ले, सेवा में लग जाता लग सकता है ना क्या। लेकिन भगवान की भगवान कभी भी ऐसे कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा में लग सकता है। सांप वर्षा ब्रज में जो तो रहते हैं, जो सांप भी भगवान के सेवक है, ब्रज में जो भी रहते हैं बिच्छू सांप जो जितनी भी जो कुछ पशु पक्षी कोई भी रहते हैं वो सब कृष्ण के सेवक है। किसका सेवक? सब भक्त है। आपके सांप कैसे भक्त हो? सांप भी भक्त है। वर्षा में एक बार राधा रानी बड़ा मान की थी, मानते भगवान ने उनको मनाने के लिए भागते थे पीछे, मानती नहीं थी कौन राधा रानी, नहीं बड़ा गुस्सा होकर जाते थे भगवान जाते थे वो सांप देखा कि पास में देखा मेरे प्रभु को इतने वो इनके मनाने के लिए कोशिश कर रही है जो नहीं मान रही, कौन सामने आ गया पूरा फणा टिक के ऐसे राधा रानी के सामने। भाई डर गई राधा रानी, पूरा घूम के फिर भगवान का आलिंगन कर लिया, इसका मान समाप्त हो गया। तो भगवान के सेवा में ये लगा दिया अपने गुण को, कौन सांप भी। इसलिए कोई ब्रज में कोई भी रहता है इसलिए वो कोई भी किसी भी जोनी में रहता है साधारण नहीं है। सांप कोई भी कोई भगवान की सेवा करता तो दिव्य है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि पशु पक्षी हो ही थाके स्वर्गे निरय तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। मुझे पशु भी बना दिए पक्षी बना दिए कुछ भी बना दिए, स्वर्ग में रखिए नरक में रखिए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी भक्ति से वंचित न हो जाऊं सेवा से। क्योंकि भगवान की जो सेवक है भक्ति है, भक्त वो भक्त है। आप कहो कि वो हनुमान गिधड़ का भी संस्कार किए, कौन भगवान रामचंद्र किसके जटायु के। आप कहे पश की क्या है, काव के जो कुआ की जोनी में रहता तमुगुणी होता है, लेकिन तमुगुण कुआ की जोनी में कौन है, काकभुसुंडी है भगवान के महान भक्त, कुआ के जोनी में रहते हैं। बंदर के जोनी में कौन है, हनुमान जी है। तो ऐसे किसी भी जोनी में रहकर जब भगवान की भक्ति करते हैं, पक्षी की जोनी में बैठे गरुड़ जी महान भक्त है। तो इसलिए किसी भी जोनी में रहकर किसी गुणों के प्रभाव है, गुणों मत देखो लेकिन भक्ति करो, ये गुण अपने आप ट्रांसडेंटल हो जाए। यदि कोई भक्ति कर रहा है तो फिर उसकी बाह्य व्यवहार को मत देखो, अपराध करोगे वैष्णव अपराध है। गंगा मसा बुध बुध फेण रूप गोस्वामी कहते कि गंगा जल पवित्र है लेकिन बारिश का टाइम में इसमें कीचड़ आ जाता है ना, गंगा जल में कीचड़ दिखाई पड़ता है, गंदे दिखाई पड़ता है, लोग कभी कभी सब उसके मरा हुआ सब भी डाल देते हैं, कहीं सड़ा हुआ कोई सुअर भाज के जाता है कभी भैंस, लेकिन फिर भी गंगा जल को पवित्र माना जाता है, फिर भी साधु लोग उसमें स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति के सिद्धांत ले लिया कि मैं भगवान के चरण में शरणागत हो जाऊंगा, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूं, और पूर्व प्रारब्ध के आधार पर कुछ ऐसे तमोगुण रजगुण के प्रभाव उसकी बाह्य रूप से दिखाई पड़ता कभी, तो इसको नहीं देखना चाहिए, संगत की मत देखो। कभी कभी दिखाई पड़ता है वृत्रासुर राक्षस जोनी में आ गए लेकिन फिर भी वो महान भक्त है, महान भक्त है, कभी कभी ऐसे ही दिखाई पड़ता है, लेकिन जो भक्ति करता है तो फिर भगवान की सेवा में लग जाता है, ये सारे गुण भी भगवान की सेवा में लगा सकता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं क्या सोते रहो, सुबह मंगल आरती में प्रणाम करके सो जाएगा, बोले क्या खाना सोना फिर मंदिर में फिर रखेंगे नहीं है, खाओगे सोएगे तो कोई बोलेगा, सेवा करना पड़ता है। ठीक है, हमारे वृंदावन में भी है कोई भक्त ऐसे खाता है फिर बहुत खाएगा और सो जाएगा, खाना सोना। यदि कम से कम भगवत प्रसाद खाता है, भगवान प्रसाद खाता सुबह बस प्रणाम तो करता कम से कम भगवान। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसके? हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।